Pura narita.
No sé qué ocurriría con el agua. देखो पुराना गेट भी ऐसे उसमें ही है, टचिंग करके बनवाया है।
बनाने वाला कौन?
आज पूरी 77 इसमें विदेशी बच्चे बैठे हैं या नहीं बैठे?
नहीं बैठे थे,
बैठे थे पूरा उपस्थित तो वही थे।
77 में आके थे?
नहीं
मुरली में नहीं है ना,
मुरली में नहीं है लेकिन
हाँ वो बताया, मुझे बताया कितने
लेकिन वो सेवन सुनाने के बाद वो लगा एक्यूरेट है कि वो विदेशी सुनाने के बाद शिवेन अच्छा लगा, समझ में आ गए कि वो विदेशी इंतजार में है, दादी आएंगी उसके,
दादी जाने वाली है,
दादी जाने वाली
है निर्वेर भाई के साथ, अपना रमेश भाई के साथ टूर पे। मेरा प्रश्न है कि सामने बैठे हैं या नहीं?
नहीं बैठे
सामने। नहीं ना,
नहीं
वही मुरली के हिसाब से नहीं बैठे हैं,
सामने नहीं,
सामने बैठे नहीं,
मन से तन से नहीं
मन की लगन मधुबन की तरफ, शरीर दूसरे दूसरे स्थानों में। क्या बोला आज मुरली में? बाप दादा किसको देख रहे हैं? दो स्वभाव को देख रहे, एक भारतवासियों की स्वभाव और दूसरी है देशियों की स्वभाव।
एक सामने बैठे हुए भारत,
इसके लिए जानबूझ के बोला है दो स्वभाव को देख रहे हैं। सभा है केवल विदेशियों भारतवासियों की, पर देख रहे हैं दो स्वभाव को, जो चातुरक हो देखते हैं सुनते हैं, जो स्नेह स्नेहपूर्वक आशा लिए बैठे हैं, बाप दादा उनको बहुत बहुत याद प्यार देते हैं, बाप दादा उनको वैसे ही देखते हैं जैसे वो बाप दादा को देखते हैं। आज भी बोला ना चात्रक, तो डबल विदेशी बच्चों में क्या देखा बाबा ने? उमंग है, उत्साह है, लगन है बाप को प्रत्यक्ष करने की, और एक बात है गुनगुनाते हैं खुशी से नाच रहे हैं, गुनगुना रहे खुशी से नाच रहे। दादी जानकी ने कहा ना जब मधुबन आई तो रात भर नींद नहीं आई, अभी बोला ना खुशी से नाच रहे हैं गुनगुना रहे हैं, उमंग उत्साह है, लगन है बाप को प्रत्यक्ष करने की। ऐसे बच्चों को देख बाप दादा खुश है, उनके उमंग का उमंग को देख हर्षित है। और फिर आगे क्या बोला? अमृत वेला
का चार चक्कर लगाया,
अमृत वेला चक्कर लगाया तो क्या देखा? अमृत वेला चक्कर लगाया तो मधुबन महान मधुबन वरदानी भूमि में खुशी खुशी से मिलन मनाते, जो मिलन मना रहे वो बाकी और बातों को
बोले।
मधुबन वरदान भूमि, मधुबन क्या है? वरदान भूमि। केवल इतना ही अगर चिंतन किया कि मधुबन क्या क्या है, तो शाम का जो योग है 6:30 से 7:30 तक वो ऐसा हो जाएगा कि पूछो मधुबन क्या क्या है। 80 से भी ऊपर नाम है, 82 80 कितने 82 निकाले थे, उतने नाम है मधुबन के। कौन कौन से नाम? आज के मुरली में बोला मधुबन वरदान भूमि में आते बच्चे खुशी में खुशी से मिलन मनाते, बाकी सब बातों को भूले हुए जो आए हैं, और जो नहीं आए वो वहाँ तन है पर मन की लगन मधुबन में। जो नहीं आए उनका तन उधर है मन इधर है, और जो आए हैं वह यहाँ आते सब कुछ भूले हुए सब बातों को भूले हुए। तो मधुबन वरदान भूमि, इधर मैं किया आज चालू किया खुद ही सुनने के लिए ज्ञान भूल जाता है। तो मधुबन क्या है? निखिलेश भाई बताओ 80 नाम मधुबन के। महान तीर्थ और तपस्या भूमि है, महान तपस्या महातपस्या भूमि है, दोनों शब्द है, और परिवर्तन भूमि है, और चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, कर्मातीत भूमि है, यादगार भूमि है, और महायज्ञ कुंड है,
और
आत्माओं का बेहद का धोबी घाट है, बेहद का एयरपोर्ट है, बेहद का क्लब है, बेहद का पोस्ट ऑफिस है, और बोलो
लाइब्रेरी,
बेहद की लाइब्रेरी है, स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का स्थान है, लाइट हाउस, माइट हाउस, पीस हाउस है, और बेहद की हड्डी है, और
स्वर्गाश्रम है,
दे मनुष्य से देवता बनाने की कारखाना है, फैक्ट्री है, स्वर्गाश्रम है, स्वर्ग का मॉडल है इंद्रप्रस्थ, और शीश महल है, जादू की नगरी है, शोपीस है, और बेहद का म्यूजियम है, ब्रह्मा कुमारी हेड क्वार्टर है, ज्ञान सरोवर है, शांतिवन है, गॉडली यूनिवर्सिटी है, चैतन्य देलवाड़ा है, अचलगढ़ है, बेहद की पाठशाला है, बेहद की स्कूल है, बेहद की सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी है, सच्चा सच्चा गौशाला है, सच्चा सच्ची 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 सच्चा सच्चा हरिद्वार, सच्ची सच्ची गौशाला, सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी, बेहद की पाठशाला, बेहद का स्कूल, हर की पौड़ी है, और क्या है मधुबन, क्या क्या है माता जी,
डिस्पेंसरी भी है,
रूहानी हॉस्पिटल है, और टॉप का स्थान है, और संगम युगी स्थान है, और सर्व प्राप्तियों का भंडार है, खुशियों की खान है, और
भाग्य बनाने का
भाग, तकदीर की लकीर है, और कितने हो गए 50 के ऊपर, और
तपस्या भूमि है,
तपस्या भूमि, महातपस्या भूमि, वरदानी भूमि, अवतरण भूमि, प्रभु मिलन भूमि, मधुर भूमि, मनोरंजन भूमि, पुण्य भूमि, और बोलो
मधुबन
देवलोक या स्वर्ग है, स्वर्गाश्रम है, स्वर्ग का मॉडल है इंद्रप्रस्थ है, और चरित्र भूमि, कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, यादगार भूमि, उपवन है, उपवन, और दूसरा है तपोवन,
टावर है ना,
टावर ऑफ पीस,
टावर ऑफ पीस है, शांति स्तंभ है, टावर ऑफ साइलेंस, और सबसे ऊंचा स्थान है, और संजय भाई मधुबन क्या क्या है 80 नाम बोल दो।
आप तो देखे होंगे
टोपी घड़ी हो गई भी जगह आपकी टोपी।
बेहद का आश्रम है,
आश्रम या आश्रम,
बेहद की वैराग्य भूमि है,
वैराग्य भूमि,
गुरुकुल
है, और
एश्लम
बनेगा,
एयरपोर्ट है,
हाँ बेहद का एयरपोर्ट, बेहद का क्लब, बेहद का पोस्ट ऑफिस, बेहद बेहद की वो सारे, गेटवे टू हेवन है, गेटवे टू हेवन है, तो इतने सारे नाम है, अगर इतने नाम भी अगर याद कर लिया जाए योग में तो मगन अवस्था हो जाए किसी की, अगर खाली नाम ही याद कर लिया कि मैं कहाँ हूँ, इतने सारे नाम जितने अभी गिनाए हमने, कितने गिनाए 50-60 तो गिना दिए,
पिकनिक स्पॉट भी,
हाँ पिकनिक स्पॉट भी, मनोरंजन भूमि,
मनोरंजन,
मधुर भूमि, पुण्य भूमि,
खेल
का मैदान, कौन सा खेल खेलते हो यहाँ पे, शीश महल है, शीश महल बन जाएगा जब मधुबन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा, तो शीश महल बन जाएगा, जादू की नगरी बन जाएगी,
जादू की नगरी भी इसका नाम,
ये सब बाबा ने बताया नाम है इतने सारे जो, तो इतने भी अगर याद रख लिए तो कितना अच्छा योग है, तो विदेश तो बाबा कह रहे हैं बच्चे उमंग उत्साह में है, गुनगुना रहे हैं, खुशियों में नाच रहे हैं, ऐसे मिलन का उमंग देखकर बाप दादा खुश है, हर्षित है, और चक्कर लगाया तो मधुबन में आने के बाद खुशी खुशी से बाकी सब बातों को भूले हुए हैं और चारों तरफ चक्कर लगाया तो देखा तन उधर है उनका, मन की लगन मधुबन में है, पर जब याद का चार्ट देखा तो क्या होगा, चार में से दो ही सुना है, ज्यादा डोज हो जाएगा। बाबा ने बोला पहली दो का वर्णन है बस, हाँ लास्ट में बोला डोज ज्यादा हो जाएगा अगर वो कभी
बाद में
और परिस्थिति वाली बातें, और दूसरा जो था स्वभाव संस्कार, तीसरा चौथा वो छोड़ दिया। इस मुरली में खाली दो बातें हैं, सबसे पहला अमृत वेला। बाबा ने क्या बोला, पहली बात कौन सी है, चार बातें की कमी है, दिनचर्या में अपने पर अटेंशन देने की कमी, दूसरी
मनन कम
है,
इसलिए व्यर्थ
शुद्ध संकल्पों को जमा कम करते हैं, व्यर्थ में टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं, या फिर मनन की कमी है। मनन की शक्ति से क्या बाप के खजानों को अपना बना लो तो विदाई ले लेंगे। मनन की
लोगन था ना, एक साकार मुरली का लोगन है, हैं नहीं लोगन है।
मनन की शक्ति से पाप के खजाने को, ज्ञान के खजाने को अपना बना लो।
18
तो बाप के खजाने को अपना खजाना बना, आगे मुरली में बोला ना, बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाया, केवल सुनते हो, खुश होते हो, अच्छा लगता है, गुजरता है, परंतु स्वरूप नहीं। बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाया। आज दादी ने बोला ना, मुरली में जितनी गहराई में जाओ तो उसका महत्व पता चलेगा, अभी की क्लास में बोला ना, जितना मुरली की गहराई में जाओगे उसका महत्व पता चलेगा। जिस बात को हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तब उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे MBBS के बाद ना लोगों को पता नहीं रहता किसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, इंटरेस्ट किसी में भी नहीं है, पर एक बार भूल गए, जैसे ऑप्थेल मिल गया किसी को आए, तो जितना ज्यादा पढ़ते जाते हैं उसके बारे में फिर इंटरेस्ट डेवलप होते जाते हैं, फिर बाकी कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, केवल आंख उसी के बारे में, क्योंकि पता चलता है ये तो बहुत गहराई है, इसमें इतनी बड़ी किताबें है आईस के ऊपर, फोर्थ वॉल्यूम, चार वॉल्यूम है केवल आय के ऊपर केवल रटायना के ऊपर एक इतनी मोटी किताब है। जब उसकी गहराई में जाते तो फिर उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर बाकी चीजों में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता। तो दादी ने बोला ना, जितना गहराई में जाओगे उसका महत्व पता चलेगा, उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा उसमें। तो मुरली के जितनी गहराई में जाएंगे उसका उतना महत्व पता चलेगा, उसमें उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर और कुछ बातें अच्छी नहीं लगेगी। दुनिया में क्या हो रहा है सब भूल जाओ, एक मुरली में था ना, साकार मुरली में, दुनिया में क्या हो रहा है सब विनाश होने वाला है, वो समाचार वाली उसके पहले हफ्ते की मुरली। दुनिया के समाचार को सुनने की हमें दरकार नहीं है, अभी था ना ये हफ्ते में, चार पांच दिन पहले ही, दुनिया में क्या हो रहा है सब भूल जाओ, ऐसी ट्रेनिंग दी ना बाबा ने दादियों को, जिसके लिए तो एकाग्र हो सके। एकाग्र कैसे हो सके, क्योंकि अगर बहुत जगह सब कुछ जानने की कोशिश करते रहे ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो एकाग्रता नहीं होती है। शुद्ध संकल्पों की एकाग्रता द्वारा क्या
बढ़ती हुई अन्य आत्माओं की बुद्धि को एकाग्र,
शुद्ध संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना ही सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा श्रेष्ठता, श्रेष्ठता क्या है, चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव करना श्रेष्ठ श्रेष्ठ, वो आज का है। तो एकाग्र बुद्धि कब होगी, कॉन्सेंट्रेटेड, जब एक में फोकस्ड है। बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश किया ना, इसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, एकाग्रता नहीं हो सकती वहां, फोकस रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। ये मुरली का डिस्कशन करने के लिए भी किसी को इंटरनेट देख चेक करना है, किसी को मेल चेक करना है, किसी को फोन पे बातें करनी है, वो सब चीजों का त्याग करेंगे तो यहाँ हम चर्चा कर सकते हैं। अगर वो सब चीजें करनी है तो ये कहाँ से कर सकेंगे, न्यूज पढ़नी है, क्रिकेट का स्कोर देखना है, क्रिकेट में क्या हो रहा है वो देखना है, समाचार संसार जानना है, तो ये चर्चा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, वो सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा तो ये ज्ञान चर्चा हो सकती है। त्याग है इसमें भी ना, ज्ञान की चर्चा करना भी ब्राह्मणों का कर्तव्य है। 14 कर्तव्य हो सकते हैं, ये एक कर्तव्य है।
14 भी गिना दो एक बार,
14 बाद में तो आ जाओ वापस। तो मधुबन में चक्कर लगाया तो ये चार बातें देखी बाबा ने, चार बातें। तो पहली बात थी दिनचर्या में अटेंशन की कमी। दूसरी बात थी
मनन,
दूसरी बात है मनन, ज्ञान के शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा नहीं किया। तीसरी बात है छोटी छोटी परिस्थिति आती है तो
घबराने के कारण स्मृति नहीं रहती, जो
बड़ी समझ लेते हैं उसको। छोटी छोटी बाप ने जो परिस्थितियों को पार करने की युक्ति अब बताई है उसको समय पर स्मृति नहीं आती, घबराने के कारण, डर जाते हैं ना। कोई एग्जाम में कई स्टूडेंट पेपर देख के डर जाते हैं, लिख नहीं पाते कुछ भी, भूल जाते हैं। हमारी क्रिटिकल केयर की जब एग्जाम हुई थी आईसीयू की, तो उसमें एक स्टूडेंट थी, एक लड़की थी, तो उसको एकदम वाइवा में इतना पूरा पसीना आ गया, इतना पसीना आ गया कि उसको प्रश्न पूछना जब चालू किए, पांच एग्जामिनर एक साथ बैठे थे वो एक तरफ, सब ऐसे ऐसे हाई फाई इधर उधर के क्वेश्चन, तो इतना पसीना कि कुछ भी याद नहीं आया उसको, फुल पूरा भूल गई। जबकि उसको 4 साल आईसीयू में काम कर चुकी थी क्रिटिकल केयर का, वो तो जिसने 5 साल का ट्रेनिंग ले चुकी है, पर वो डर इतना ज्यादा कि उनको एग्जामिनर्स को देख के ऐसे, कोई कलकत्ता से आया, कोई कहाँ से आया, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, फिर 5 एग्जामिनर महारथी क्रिटिकल केयर के 40-40 साल के अनुभव वाले सामने बैठे हैं, तो उनको देखकर ही उसको पूरा पसीना, इतना पसीना कि उसको कुछ भी नहीं आया आखिरी में। फिर एकदम सिंपल से सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा, वो भी नहीं आया, तो उसको बोला अभी जाओ नेक्स्ट ईयर अगले साल मिलेंगे, फेल।
जवाब नहीं दिया,
फेल। पासिंग मार्क्स 50% से ज्यादा रहते हैं मेडिकल की सारी एग्जाम्स में, फेल। तो यहाँ भी है छोटी छोटी परिस्थितियां, पर घबराने के कारण बाप ने जो युक्तियां बताई है समय समय पर परिस्थितियों को पार करने की, वो याद नहीं आती, तो भूल जाती, ये एक कमी। चौथी, स्वभाव संस्कार, अपने ही स्वभाव संस्कार है, जिन्होंने जानते हैं कि जो नहीं होने चाहिए, जिन्होंने पास्ट में भी धोखा दिया है उनके वशीभूत हो जाते हैं, रचता होते हुए भी वशीभूत। पुराने आदि संस्कार, आदि अनादि संस्कारों की स्मृति नहीं रहती, वश हो जाते, वशीभूत हो जाते, अपने ही संस्कारों के वशीभूत हो जाना। उस दिन इनका क्लास था ना, ब्रिजमोहन भाई का इधर क्लास था, उन्होंने उदाहरण दिया था ना, एक कमरा है जिसमें 40 खिड़कियां है, 39 खिड़कियां, 39 खिड़कियां खुल बंद है, एक ही खिड़की चालू है, तूफान उसी में से आएगा। आपने 39 खिड़की तो बंद कर दी थी, एक खिड़की खोल के रखी थी, बस उसी से तूफान आएगा। माया के आने का दरवाजा है कमजोरी। एक मुरली में बाबा ने बोला है, जैसे डाकू जो होता है वो दरवाजा बंद दिखता है तो ऊपर से वेंटिलेटर से आता है, तो माया भी जब देखती है किस समय ये कमजोर है उस समय माया अटैक करती है। 23 घंटा 50 मिनट शक्तिशाली है, 24 घंटे में से 10 मिनट कमजोर है, ये 10 मिनट में ही माया अटैक करी, बाकी सारा समय ज्ञान के चिंतन में है, मनन में है, संगठन में है। पांच मिनट में ही माया आएगी, और वो 5 मिनट में आके 5 दिन अगले खत्म कर देगी, 5 मिनट में आके 5 दिन खराब कर देगी, इतनी उसका। माया में परखने की शक्ति तुमसे ज्यादा है, एक मुरली में बाबा ने बोला है, तुम में परखने की शक्ति कम है पर माया में परखने की शक्ति बहुत ज्यादा है। वो ये परख लेती कि ये कब कमजोर है, किस समय कमजोर है, इसकी कौन सी कमजोरी है, और बराबर उसके आने का दरवाजा है। कोई ये सोचता है कि मैं सारे दिन भर योग लगाऊंगा, तो बाबा कहते हैं ना, डबल लॉक लगाओ, याद और सेवा। अगर एक लॉक लगाओगे तो फिर भी माया आ सकती है, एक लॉक मतलब सेवा छोड़ दी और बस सेवा में, योग में लग गए, कितना योग करेंगे?
योग छोड़ दिया सेवा में बिजी,
या योग छोड़ दिया बस सेवा ही सेवा कर रहे हैं। डबल लॉक चाहिए, डबल डबल लॉक। एक लॉक रहेगा तो माया वो तोड़ के अंदर आएगी, डबल लॉक माया नहीं तोड़ सकते। ताला लगा देती वो दूसरा है। तो सबसे पहली पॉइंट बाबा ने ये बताया, तो ये आगे पूछा योद्धे, योद्धे बन जाते हैं ना, हंसी आती है, सुन के ऐसा अगर हंसी आती है तो अगर वो एक्ट में करते हो तो हंसी आएगी।
कल्याण और रहम आता है
बाबा को भी, कल्याण और रहम का संकल्प आता है बच्चों की ऐसी स्थिति देखकर। लास्ट मुरली में था, लास्ट संडे की मुरली में था ना, कि बाबा ने प्रश्न पूछा था कि हलचल में, हलचल से परे अचल कितना रहते हो, उसने हाथ उठाया था। तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो अब हाथ उठाओ। अब ये सोचो कि जिस कारण से हाथ नहीं उठाया वो करने में कितनी शर्म आएगी,
करने में कितनी शर्म आएगी
जिस कारण से हाथ नहीं उठाया था। लास्ट संडे की वही मुरली थी, हलचल वाली, हलचल से अचल, ये होमवर्क था। दूसरा होमवर्क था अनुभवी मूर्त बनने वाला, ज्ञान अर्थ केवल समझना नहीं, अनुभवी मूर्त बन के दूसरों को अनुभवी मूर्त बनाना। अनुभव ही पक्का, अनुभव के फाउंडेशन को पक्का करो, प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभवी आत्मा वायुमंडल के प्रभाव से संघ के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्मा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति को, समस्याओं को ऐसे हल करेगी जैसे कुछ है ही नहीं। आया पाठ बजाया साक्षी होकर, न्यारा प्यारा होकर देखा जैसे खेल है, मनोरंजन है। घबराएंगे नहीं, उसके लास्ट में
उठाना चाहिए।
हाथ उठाने के भी मार्क्स है, एक जगह पापा ने बोला है, चार्ट लिखने के भी मार्क्स है।
कुछ नहीं है तो अगर आपने
अभी एक दो साल में भी ऐसे ही उठाया था, बताने किस बात में उठाया था, कोई नहीं उठाया, कुछ लोगों ने नहीं उठाया, फिर एक
उठवाया।
कुछ लोग है जो कभी नहीं उठाते, कुछ लोग है वो हर बात में हाथ उठाते। माता है दो दो हाथ उठाती है, क्या प्रश्न पूछ रहा है पता ही नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था न्यू ईयर की, पूछा की क्या प्लानिंग की है, जिसने जिसने प्लानिंग की हाथ उठाओ, सब माताओं ने हाथ उठाया। क्या प्लान की क्या बता, होगा नहीं बोलने के बाद भी होगा, उसके लिए क्या कर सकते। माता ईश्वर का गेट खोलने के निमित्त है,
उमंग बहुत होता है,
पता नहीं चलता है क्या। पर ताली बजाना एक स्थूल है, योग युक्त तो स्थिति में कहाँ ताली नहीं और कहाँ ये
हाथ चलेगा ही नहीं ना,
हाथ चलने का क्या, वो इंडिकेशन है कि योग युक्त नहीं है। तो पता चलता है आत्मा योग युक्त नहीं है, योग युक्त आत्माओं को ये सब करने की कोई दरकार नहीं है। तो ये चार बातें बताई, उसके बाद में बताए व्यर्थ संकल्प की कंप्लेन बाबा के पास अब तक आती
है।
व्यर्थ संकल्प क्या करते हैं, तन और मन दोनों को कमजोर करते हैं, कमजोर करते हैं, तन को भी कमजोर करते हैं और मन को भी कमजोर करते हैं। मन को तो ठीक है, तन को भी बोला आज नई बात है ये।
अभी जब पढ़ा ना,
मन अगर कमजोर हो गया तो तन भी हो गया।
वो तो है, व्यर्थ संकल्प तन को भी कमजोर करता है।
मुरली खोली तो सबसे पहले वही गई, नीचे थी वो लाइन, अरे बड़ी अच्छी लाइन है, वो रह गई बुद्धि में।
आगे फिर है अमृत वेला के बारे में, आप बताओ क्या बोला,
अमृत वेला
क्या बोला है, अमृत वेला के बारे में।
अमृत वेला में बाबा ने देखा कि कई लोग युद्ध करते हैं, कई लोग लगन में मगन।
हाँ वो तो है, वो पहले हो गया। अभी इधर नीचे ये जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि अटेंशन की कमी, अपने पर अटेंशन की कमी रहती है, उसके बारे में अमृत वेले के बारे में कुछ बोला है नीचे। सेन मन की दिनचर्या सेट करो, पावरफुल स्थिति की सेटिंग अमृत वेला करो, लास्ट लाइन वही।
चलते फिरते साधारण तो कर सकते हैं,
समय की
समय सुहावना
समय
सुहावना है, समय का संयोग है, श्रेष्ठ समय है, वरदानी समय है, सतो प्रधान बुद्धि है। तो जैसे समय श्रेष्ठ है, स्थिति भी
श्रेष्ठ
होनी चाहिए। जैसे समय स्थिति, हाँ सबसे पावरफुल स्थिति है
बीज रूप,
बाप समान बीज रूप स्थिति। सबसे पावरफुल स्थिति है बाप समान बीज रूप स्थिति। सुबह के समय में शक्तिशाली स्थिति, बाकी साधारण स्थिति तो सारे दिन में भी होती है बाबा ने बोला, पर सुबह का समय श्रेष्ठ है, सुहावना समय है, आदिकाल है, ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह के संकल्प का प्रभाव सारे दिन भर में पड़ता है। सुहावना समय, श्रेष्ठ समय, सतो प्रधान बुद्धि होती है, समय का सहयोग है। तो जैसे श्रेष्ठ समय वैसी श्रेष्ठ स्थिति हो। और सबसे पावरफुल स्थिति है बाप समान बीज रूप स्थिति। अमृत वेले बाबा ने उस दिन बोला था, लेटे लेटे पर नींद नहीं आनी चाहिए।
नींद नहीं,
कोई होगा बीमार सामने उसके लिए बोला होगा, सबके लिए नहीं है। हट करके बैठ जाओ, इसमें मेहनत है।
नींद नहीं आनी चाहिए,
नींद नहीं आनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये मन की सेटिंग, मन की दिनचर्या पहली बार बोला पापा ने 77 की, इसके पहले भी बोला है,
कई बार बोला है
77 से पहले।
मन की
77
मन की
नहीं नहीं 77 की मुरली है, उसके पहले बोला है कि कभी
बोला
है 77 के। तो मन की दिनचर्या सेट करना है, जैसे बाबा ने कहा तुम तन की दिनचर्या
70 की मुरली
उसमें, अच्छा
उसमें अमृत वेले से रात्रि तक
पूरा दिन
क्या क्या करना है, अलौकिक दिनचर्या
सोने तक।
तो मन की दिनचर्या में क्या क्या करेंगे, सबसे पहला इसमें एक काम करना है कि हमारी दिनचर्या क्या क्या है उसके सारे पॉइंट्स निकालने। हरेक की दिनचर्या अपनी अपनी है, उसमें क्या क्या सोचना वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले हमारी दिनचर्या क्या है, स्थूल स्थूल बाबा ने वही बोला ना, स्थूल दिनचर्या जो है वो जैसे किसी को उठना है, अमृत वेला, वो दो तीन चीजें तो सेम है, पर डिपार्टमेंट जाना, डिपार्टमेंट में पहुंचना, वहां क्या क्या करना, वो दिनचर्या कैसी है, हर एक की अपनी अपनी सेटिंग होगी, पर उसमें मेन मेन चीजें तो सेम है। सबसे पहला है अमृत वेला उठते ही क्या करना, गुड मॉर्निंग, उससे भी पावरफुल कुछ संकल्प है। किसने उठाया,
बाबा ने उठाया,
आवाज आनी चाहिए कि तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हें पुकार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अपने आप से रोधियान करो, अलग 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 प्रकार, बाबा पुकार रहा है वतन से आ जाओ, इस तरह से महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है, शुद्ध संकल्पों का खाता जमा करो बाबा ने बोला। तो संकल्प क्रिएट करने अमृत वेले, किसने उठाया, किसने जगाया, और तुरंत चलना है विश्व सेवा के लिए।
कई बार ऐसा
पावरफुल बीज रूप स्थिति बनाने के लिए,
कई बार ऐसा विजन होता है कि जैसे बटन से इतना लंबा हाथ कर दिया बाबा ने, हाथ
और खींच लिया,
उठा दिया,
अनेक 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 योग के प्रयोग है, असंख्य योग के प्रयोग है, उसमें कोई भी आप पर करना है, श्रेष्ठ संकल्प में उठते ही स्थित करना है अपने आप को। तो वो फिर अमृत वेला, अमृत वेला को छोड़ दो, फिर उसके बाद में मुरली सुनते समय तो आज बाबा ने बताया थोड़ी सी बातें, पर उसके वो भी छोड़ दो, फिर दूसरी जो छोटे छोटे कर्म है, जैसे आईने में देखना, स्नान करना, घूमना फिरना, और
खाना
खाना, खाना
चलना,
चलना, और दूसरे कर्म कर्म संबंध संपर्क में आते, दूसरों से मिलते, जैसे अलग अलग हम कर सकते, सबको आत्मा देखना, एक तो ये
सुनना,
आईना देखते समय
भ्रुकुटी
के बीच में बिंदु देखता, पर सबसे पहले तो कम से कम देखना, जो बहुत ज्यादा बार बार देखना ये भी देह अभिमान है।
एक माता की उसने कितने साल में देखा
ही नहीं, हाँ
सेवा में
कई भाई ऐसे जिनके कमरे में आईना ही नहीं है, ऐसे भी
नहीं बोलते थे, पानी नहीं था,
पानी
तो आईना देखते समय, फिर भोजन करते समय भी अलग अलग सामान, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या पवित्रता की किरणें देखने जा रही है,
किरणों के नीचे
अलग 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 जिसको जैसा है, पर ये कर्म है कि जिसमें हमको करने हैं। हाँ हाँ जैसे तुम्हारे मन की दिनचर्या है ना, अपने तन की दिनचर्या है, वैसे मन की दिनचर्या, एक एक कर्म के साथ एक एक सामान जोड़ना, हर एक की अपने अपने हो गई, घूमना फिरना, खाना खाना, किसी को देखना, गाड़ी स्टार्ट करना, गाड़ी चलाना, मोबाइल पे मोबाइल की घंटी बजे तो क्या सोचना, बाबा पूछ रहा है कि क्या हो, कैसे हो, मेरी याद में हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा,
मोबाइल
फिर सोते समय क्या करना, सोते समय किसी ने बहुत अच्छा लिखा था ना, देह रूपी गाड़ी को बिस्तर रूपी गैरेज में लगा कर मैं आत्मा ड्राइवर चली परमधाम परम पिता परमात्मा के पास।
ये तो बहुत अच्छा अध्याय,
अलग अलग
किया
आप लोगों ने। हाँ, ये सूरज ने बताया था कि देह रूपी गाड़ी को बिस्तर रूपी गैरेज में लगा कर मैं आत्मा ड्राइवर चली ऊपर सोने बाबा के पास। तो ये सोते समय और कौन से कर्म है, कर्म बताओ, हर एक अपने अपने कर्म है, हमारे घर में पेशेंट देखना। आप बताओ।
मैं रोटी बनाती तो मैं,
हाँ भोजन बनाते समय मैं क्या करे,
क्या कहती है, मैं मीठ हूँ परंपरा बना करा रहे हैं, मैं बाबा का साफ सुथरी हूँ, ये मुझे नचा रहे जैसे नचा रहे, मैं नाच रहा हूँ, मेरा रोटी का गरी
बाबा के पास
देखना,
राइट,
बाबा बाप दादा है सचमुच डोरी में मुझे नचा रहे खींच रहा मिलना शुरू कर।
ये भोजन बनाते समय, फिर खेल खेलते समय, खेल खेलते समय भी बनो, हाँ पढ़ाई करते समय, मुरली सुनते समय, कौन कौन से सामान, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, जैसे बाबा अभी अभी उस तन में आके सुना रहे, वैसे मैं आज अभी 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 इस तन में आके सुन रही हूँ। लिखा है, हाँ लव लेटर की कितनी महत्व होता है पता है, कि बाथरूम में जा जाके पढ़ते हैं, लाइट बंद करके तकिया के नीचे रख के पढ़ते हैं, मोबाइल के लाइट में पढ़ते हैं लोग। कितना उसका महत्व होता है, उतना महत्व है मुरली का, संभाल के रखते, छुप छुप के पढ़ते, कोई देख ना ले ऐसा पढ़ते। तो मुरली सुनते समय और आज की मुरली में जो बताया, क्या करो मुरली सुनते समय, केवल कुछ नहीं हो जाना है, गुह्यता बहुत है, अच्छा लगता है, कुछ होता है, इतना नहीं, सुनना समाना स्वरूप बनना, अनुभवी मुख बनना, चारों बातें बताई वहां, सुनते सुनते ही स्वरूप बनना, जैसे सुना मैं निराकार आत्मा हूँ तो तुरंत स्थित हो जाना निराकारी स्थिता में, सुना परम धाम की बातें आई तो परम धाम में स्थित होके सुनो, स्वर्ग की बात आई तो स्वर्ग देवताई स्थिति में स्थित होकर सुनो, जो जो बात आ रही है उसमें स्थित होकर सुनो, ये भी एक मेथड है। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे मुरली सुनते हो तो ज्ञान शुद्ध खजाना, ज्ञान का शुद्ध खजाना जमा होगा, और फिर इन अनुभवों को बार बार सुमिरन करते रहो तो बुद्धि और कहीं नहीं जाएगी, इसी में बिजी रहेगी, व्यर्थ से किनारा हो जाएगा, शुद्ध संकल्पों को भरना है ना बुद्धि में। तो मुरली सुनते समय मैं अलग अलग सामान, जैसे मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, दूसरा कि अभी अभी उस तन में, जैसे वो आया मैं अभी अभी इस तन में आया हूँ सुनने के लिए, वो सुनाने के लिए मैं सुनने के लिए, तीसरा सुनते सुनते उसका स्वरूप बन जाना जो आज बोला, और क्या क्या कर सकते हैं मुरली सुनते समय, कई लोग उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग, ज्ञान के पॉइंट, योग के पॉइंट, इसके हाँ भगवान बात कर रहा है मेरे से, दूरियान हो रही स्वयं, फिर अपने भाग्य का चिंतन कि कौन आया है सुनाने के लिए,
भगवान ने मेरे सामने पिटारा खोल के रख दिया।
क्या बोला,
भगवान
आया है स्वयं मुझे पढ़ाने के लिए, सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देने, इस चैतन्य सृष्टि का कल्प वृक्ष का जो बीज है वो बोल रहा है, जैसे वो आम का वृक्ष बोल नहीं सकता, पर ये चैतन्य बीज जो बोल रहा है ये बता रहा है, ये मेरी टाल टालिया है, बता रहा है ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान,
अगर चैतन्य होता तो बताता,
ये तो चैतन्य बीज है, जो बोलता हुआ बीज है, ये दूसरा बाबा का नाम है। हाँ सुनते सुनते साथ साथ उसको धारण करते जाना, और सुनने से पहले ये संकल्प करके जाना है कि बाबा जो सुनाएंगे मैं तुरंत धारण कर लूंगा, ये संकल्प बहुत पावरफुल संकल्प है। मुरली सुनते जा रहे हैं ना, वो जाते जाते एक संकल्प करना कि जो भी पावरफुल पॉइंट आएगी मैं उसको तुरंत वहीं पर कैच करके धारण कर लूंगा, आज से ही उसको धारण कर लूंगा तुरंत।
तुम
क्या था तुम्हारी हड्डी धारना चाहिए, ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टपकते रहना चाहिए, ये तुमको शोक रहना चाहिए मनुष्य से। महारथी अर्थात हर संकल्प हर स्वाद बाप की याद, महारथी अर्थात महान संकल्प, महारथी अर्थात साधारणता समाप्त होती जाए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए, जैसे जैसे महानता आती जाए, ये है महारथी आत्माओं की निशानी, ये है गुह्य पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की गुह्य गति या श्रेष्ठ पुरुषार्थ। हो जाएगा, पॉजिटिव रहो ना, हो जाएगा, हो जाएगा, बाबा को विश्वास है हो जाएगा और आपको नहीं है, हो जाएगा। बाबा ने बोला है ना, कमजोर संकल्प नहीं करो, दृढ़ संकल्प की हट्टी भट्टी करो, दिल्ली वालों को बोला ना दृढ़ संकल्प की भट्टी।
वो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जैसे अनहद शब्द
बोलता है, अनहद अजपा जाप उधर जैसा चलता है वैसे तुम्हारा भी यहाँ होना चाहिए। कमजोर संकल्प नहीं करो, दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ संकल्प की भट्टी करो, बाबा ने बोला। ऐसा मनसा व्रत करो तो सफलता होगी, तो कमाल होगी, आगे बोला है। चलो कहाँ थे, हाँ तो मुरली सुनते समय, तो मुरली सुनते समय ये सब करो, अमृत वेला और मुरली, बस इसी पे है पहली मुरली। टाइम टेबल सेट करना है, अपना अपना टाइम टेबल रोज सबने बनाना है।
अनुभवी मूर्त बनकर सुनो,
अनुभवी मूर्त अपनी दिनचर्या, पहले सबसे पहली स्टेप है कि हमारी दिनचर्या क्या है वो लिखो। जैसे यहाँ से किसी को जाना है रोज शांति में, तो वो जाने का समय
खाली होता है,
हाँ वो वहाँ क्या करना है, जैसे सीढ़ियाँ उतरते समय क्या करना है। जैसे मेरा है कि सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है कमरे से नीचे जाते समय, सीढ़ियाँ उतरते समय क्या करना है, जैसे ओपीडी में जाते तो एप्रन टंगा होता है वो पहनना है, कपड़े पहनते समय क्या संकल्प लेना है और फिर जाना है। हाँ तो उसमें उसमें फिर और कुछ नवीनता नवीनता लाना है, बाबा ने बोला ना दिल्ली के ग्रुप को नवीनता चाहिए, हर चीज में नवीनता चाहिए, भाषण किया सुना
तेज तेज बना
और गए, इसमें कुछ नहीं पुरानी बातें, नवीनता नवीनता हर चीज में बाबा को नवीनता, ऐसी नवीनता वो एक वरदान था ना, एक सेकंड पहले की जो स्थिति है आगे वाली स्थिति उससे आगे हो, एक सेकंड के बाद वाली स्थिति से, ये है फास्ट पुरुषार्थ।
संजय भाई अलग जोर लगाते हो आप।
तो दुकान में कोई आए तो सबको क्या क्या करेंगे संजय भाई?
पैसा कौन लेगा?
पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं जाओ
फिर बोलो कि गेट वाले को फोन करके, अरे भाई पैसा देके नहीं गया, पकड़ना कौन था, हम कहाँ जाने भीड़ में उसको।
तो ये थी फर्स्ट उंगली, जिसमें बाबा ने ये चार बातें देखी पर उसमें से दो का वर्णन किया, दो बातें छोड़ दी। छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं और स्वभाव संस्कार, अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, उसको छोड़ दिया। तो मुरली अमृत वेला, दिनचर्या सेट करना, एक जिसने अपनी दिनचर्या सेट कर दी ना बस वही सबसे बड़ा काम है ब्राह्मण जीवन में, भोजन को सेट करना है। हाँ वही ना, मन का ही तो वही तो सबसे बड़ा काम है, तन का तो हो गया है, उसका तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है।
मजबन ग्रुप में रहने वालों का दिनचर्या अपने आप सेट हो जाता है स्कूल से,
फिर भी करना
मन
का मन ही करना है, नहीं तो नहीं होगा।
नेक्स्ट मुरली, दीदी से मुलाकात। क्या बोला? वो तो विदेशियों से मुलाकात है, विदेशी बच्चे सामने देख रहे हैं, नई नई फुलवाड़ी है तो उनको भी उमंग उत्साह है, क्या कि हम पीछे आए हैं तो आगे जाए। दादी बता रही थी कि वो आई तो उसको भी लगा बहुत लेट हो गया है, तब बता रहे थे ना अभी, तब उनको लगा कि लेट हो गया, मम्मा दादी पहले से, दादी या मम्मा पहले से है तो अभी मैं क्या पुरुषार्थ करूँ, तब उनको लगा लेट हो गया। तो नई नई फुलवाड़ियों को तो संकल्प रहता है कि कैसे कोई ऐसा कौन सा विशेष कार्य करे कि जो आगे जाए, हाई जंप ले, हाई जंप बोलो ना, ऐसा क्या करे। फिर बाबा ने भी पूछा उनसे कि किस कोने की, बाप को, बाप का नाम किस कोने से, कौन सा देश, कौन व्यक्ति राष्ट्र बनेगा, ऐसा पूछा ना आगे। फिर बाबा ने बोला कि बच्चों का उमंग और मेहनत देखकर बाप को अच्छा लगता है। एक वाक्य वहाँ पर, बाप बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा लगता है,
अच्छा लगता है,
है वहाँ पर।
हाँ इसी मुरली
में, इसी मुरली में, ये दूसरे रीति से बोला बाबा ने। मैं तो ऐसे ही इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि बाबा हमेशा बोलते हैं बच्चों की मेहनत
अच्छी नहीं लगती,
तो यहाँ बोला बच्चों का उमंग और उत्साह देख और मेहनत देखकर बाप को अच्छा लगता है। जो भी है आकर्षण, बाप के स्नेह और मुरली की शुरुआत में एक वाक्य है, बाप के स्नेह और सेवा का आकर्षण, बाप के
पहला दाना और अंतिम दाना।
हाँ बोला इसके बाद तो दादी से फिर क्या बोला,
प्लान में बैठोगे जब
तब प्लान बनाओगे या अभी तक प्लान बनाओगे?
अभी प्लान बना रहे हैं।
फिर वो बहुत पावरफुल पॉइंट महारथी वाली बोलो क्या है उसमें नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं
वो नहीं बताओ
तो दूसरी, ये दाने वाली,
ये तो वरदान से पहले की है,
दाने 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 ने पूछा 108 उसमें से पहला और आखिरी में क्या अंतर। सबसे पहला ये प्रश्न, जो मार्क्स बने किसी एक विशेष सब्जेक्ट के ऊपर रहेंगे या टोटल सब्जेक्ट के ऊपर रहेंगे, सेकंड प्रश्न। तीसरा प्रश्न, ये जो विशेष सब्जेक्ट है ये युगल दाने का कौन सा है, सौ का कौन सा है, आठ का कौन सा है, सौ का कौन सा है, ये तीसरा प्रश्न। चौथा, एक जो महारथी है उनमें पहला दूसरा तीसरा नंबर किस आधार से बनेंगे, और जो 108 है उसमें पहला और 108 आखिरी उसमें अंतर किस बात, उसका आधार क्या है। तो इस बात पर मनन करो, चिंतन करो, बाद में बताओ।
नहीं लास्ट में बताया है इसमें,
इसमें वो तो महारथियों का बताया
सेंटेंस है, बोला इनकी जो विशेषता है ना वो विशेष
विशेषता, इनकी जो कमी है, इनकी जो कमी है वो भी विशेष है,
इसी के आधार पर अंतर आता है।
पर
फिर भी इंट्रो दिया ना, जो कमी है वो भी विशेष है। हाँ दादी ने बताया,
दादी ने तो बताया, एक है जो सेवा करते हैं सच्ची दिल से, एक है जो दूसरे करते हैं वो नाम मान के लिए, और तीसरे करते हैं टाइम पास। वो दूसरा पॉइंट था कि जिसको अलौकिक परिवार में भी लगाव है वो 108 तो क्या 16,000 में भी नहीं आएंगे, लगाव लगाव नहीं होना चाहिए,
साधारणता है तो भी नहीं आएंगे,
लगाव
इसमें दादी के
लगाव और लगन
क्या बोला, जो एक जो मैं जो ब्राह्मण जीवन में आया हूँ उसका अधिकांश में अब तक कैसे चलता
हूँ, ये भी बात है।
कितनी बार माया से हार, उसमें तो हम चिंतन कर सकते, विजय रतन कौन, बाबा ने एक मुरली में बैठा है, आठ पॉइंट बताइए, विजय रतन कौन बनेंगे, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, संपूर्ण प्रीत बुद्धि, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण संतुष्टता, संपूर्ण निरंकारी निराकारी निर्विकारी, और उसके पर संपूर्ण विश्व कल्याणकारी, संपूर्ण माया जीत और सदा बाप समान साक्षी दृष्टा, ये आठ बातें हैं विजय रत्न
बाबा की।
आठ बातें विजय रत्न के बारे में तो बाबा ने बता दिया, ये आठ चीजें चाहिए, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण प्रीत बुद्धि, संपूर्ण संतुष्टता, संपूर्ण माया जीत, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, बाप समान साक्षी और विश्व कल्याणकारी, संपूर्ण, ये हर चीज में संपूर्ण संपूर्ण शब्द है, तो वो है संपूर्ण, वो है विजय रतन,
सबसे बड़ा एग्जाम तो यही है,
संपूर्ण निश्चय बुद्धि, संपूर्ण पवित्रता, पवित्रता संपूर्ण मतलब संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, विकार पांच विकार तो है उसके जो अंश वंश है वो भी ना रहे, संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं, जैसे बाबा ने बताया था एक मुरली में कि जैसे कोई बड़ा आदमी शरीर छोड़ता है तो क्या हो जाता है, उसके भूले भटके संबंधी भी आ जाते हैं हक लेने के लिए, तो यहाँ तुम समझते हो तुम काम तो खत्म हो गया, पर उसके जो अंश वंश है वो सब आ जाते हैं। जैसे दादी ने बोला ना, अगर अलौकिक परिवार में भी किसी से लगाव है तो 108 तो क्या 16,000 में भी नहीं होगी। एक मुरली में बाबा ने बोला था कि किसी से प्यार, एक्स्ट्रा प्यार, तो ये जो एक्स्ट्रा प्यार है ये है अंश काम का, आवश्यकता है ये है अंश लोभ का। कोई ये शायद ठीक नहीं होगा, ये तो ऐसा ही है, ये घृणा भाव, ये है अंश क्रोध का। एक मुरली में अंश बताए थे हर एक विकार के छोटे छोटे छोटे, ये अगर है तो भी संपूर्ण नहीं करेंगे। इसके लिए तो 8 ही है खाली, संपूर्ण निश्चय बुद्धि 8 है। और उसमें भी पूछा कि पहला और आठवा उसमें क्या अंतर है, घुई बात है। बाबा ने वही तो बोला, ये घुई बात है, हड्डी धारणा, बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे, निरंतर बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे।
बाबा ने कहा ना कि बढ़ते जाओ आगे, बढ़ते जाओ,
साधारण। चलो ये हो गया, फिर दिल्ली वालों की मुलाकात। दिल्ली को क्या बोला, दिल्ली दरबार,
दरबार,
दिल्ली दरबार पता है ना क्या है?
महाराजा,
दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट रहते हैं बहुत सारे, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में है उसकी ब्रांचेस। और दिल्ली दरबार और एक चीज होती है, अभी नहीं रहता है दिल्ली दरबार, तीन ही दरबार हुए। लास्ट दरबार था 1911 में, पहला 1877, दूसरा 1902 एंड थर्ड था 1911 लास्ट। दिल्ली दरबार मतलब जो जब भारत विदेशियों का हुकूमत थी भारत पर, तो इंग्लैंड की राजा और रानी का जो ताजपोशी कोरोनेशन वो दिल्ली में करते थे वो लोग, तो लास्ट जो हुई 1911 में हुई, तो उसको कहा जाता था दिल्ली दरबार। तो बाबा ने पूछा दिल्ली दरबार है तो रहा, महाराजा महारानी कितने तैयार किए आज पूछा ना? वहां पे भी महाराजा महारानी की ये होती थी, लास्ट किंग एडवर्ड का किसका है वो, वहां पे वो खत्म हो गया, क्योंकि फिर कांग्रेस आ गई भारत में, सब मूवमेंट चालू हो गया ना, तो वो बंद हो गया उनका लास्ट दिल्ली दरबार 1911 में। तो दिल्ली दरबार को बाबा ने याद किया। तो दिल्ली है सेवा का आदि स्थान, सेवा का भी स्थान है और राज्य का भी स्थान है, दोनों चीजें हैं। फर्स्ट सेवा का स्थान भी है और राज्य का भी स्थान है, दोनों है। इसके लिए क्या, दोनों का आदि स्थान है, इसके लिए राज्य। बाबा ने बोला ना, किस पे राज्य, स्व पे राज्य और फिर विश्व पे राज्य, साथियों पर राज्य करने के स्वराज्य अधिकारी बनो, नहीं स्व पर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर नहीं। तो स्व पर राज्य बाबा ने बोला तब विश्व पर राज्य कर सके, स्व के अधिकारी। इस मुरली में फिर वहां पर बोला कि क्या, सबका संगठित एक संकल्प हो, दिल्ली का किला मजबूत करने, मधुबन का एक नाम है ब्राह्मणों का किला, ब्राह्मणों की जन्मभूमि, ब्राह्मणों का ठिकाना, ये भी तीन अलग नाम है। तो दिल्ली का भोजनालय, ब्राह्मणों के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए, इसमें तो संगठित रूप से एक संकल्प बाबा ने बोला मनसा व्रत, किला मजबूत हो ये मनसा व्रत करो,
विजय हमारी है।
फिर उसके बाद में विजय की बात है कि होना ही है, सबका एक संगठित संकल्प, घेराव तब लास्ट में घेराव डालेंगे, तो सबका एक संगठित संकल्प कि होना ही है तो कमाल होगी। ये सारी जो दिल्ली वाली मुरलियां है इसमें सेवा में सफलता के बारे में बताया, सेवा में सफलता कैसे कैसे होगी, तो सबका एक संगठन संकल्प हो, सबके मन में एक मनसा व्रत हो कि किला मजबूत करना है, होना ही है, कमजोर संकल्प नहीं होगा, नहीं होगा पता नहीं, और डबल स्टेज स्व की और स्थान की, हाँ डबल स्टेज हो तो सफलता होगी। उसके बाद में झंडा, स्लोगन,
दिल में झंडा
और
विजय
चित्र, ये तो बनाते हो
रूहानी,
पर हर एक चैतन्य चित्र हो, हर एक की बुद्धि में झंडा, विजय का झंडा लगाए, और स्लोगन हो विजय हमारा, सफलता हमारा, जन स्वतंत्र अधिकार। और उसके बाद में फिर लिफ्ट की गिफ्ट, वो सुदामा का भी है ना,
चावल चपटी,
हाँ जिन्होंने सहयोग दिया उनको, जिन्होंने सहयोग दिया उनको क्या होगा, सहयोग दिया उनको कुछ तो बोला एक, उन्हें विशेष सहयोग मिलेगा, जिन्होंने मदद की उनको विशेष, हाँ वो तो दिल्ली वालों को, कितना अच्छा वाक्य है, बाप दादा, बाबा का वरदान ड्रामा प्रमाण, दिल्ली वालों का है कि सदा संपन्न संपन्न रहेंगे। बाबा का वरदान ड्रामा प्रमाण, बाबा का वरदान है ड्रामा प्रमाण, सदा संपन्न रहेंगे। हाँ, फिर और सफलता, उंगली हाथ में हाथ मिलाना बोला ना, संकल्प इकट्ठी उंगली हो सकी तो सफलता होगी। और फिर वो घेराव, लास्ट में घेराव होगा, फिर ऐसा सब करोगे ना तो घेराव। तो दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए ही नहीं है, सबके लिए ही है वरदान, केवल दिल्ली को ही नहीं है, सबको ही है। एक संकल्प, एक मनसा व्रत, संगठित संकल्प, दिल्ली का किला मजबूत, ब्राह्मण का किला मजबूत होना चाहिए।
बोला ना सौ का राज फिर विश्व का राज,
सौ का राज विश्व का राज। तो फिर उसके बाद में महारथि तीव्र पुरुषार्थ क्या है, महारथियों की गोई है, तो उसमें बताया हर समय,
हर संकल्प
होता है, याद याद दिलानी ना पड़े,
सुते याद आए, सुते याद
आए। स्वतः ऐसा अविनाशी स्नेह हो, अविनाशी स्नेह किसका काम करेगा, लिफ्ट का काम करेगा। अविनाशी स्नेह चाहिए तो मेहनत नहीं लगेगी, अगर अविनाशी स्नेह में अलबेलापन है तो लिफ्ट बंद, करंट नहीं मिलेगी, जैसे वो बिजली चली जाती है वैसे लिफ्ट का सुख तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो था अविनाशी स्नेह चाहिए। और अविनाशी सफलता का आधार पहले आप, ये है सफलता की विधि,
इसी को फॉलो
पहले आपको बोले आते हैं।
हाँ, तो बाप भी कहते हैं बच्चे पहले आप, बाप भी कहते हैं पहले आप। अगर पहले आप करेंगे तो कौन सी बात हो जाएगी, एक बात हो जाएगी, और एक जो उसी वरदान में थी, परमार्थ और व्यवहार में सबके प्रिय बन
जाए,
परमार्थ और व्यवहार में सबके प्रिय बन जाए।
परमात्मा
वो भक्ति के शब्द है ये, परमार्थ और व्यवहार, परमा व्यवहार करते हुए गृहस्थ धर्मों में करते हुए परमार्थ भी करना है। हाँ, परम अर्थ परमात्मा क्या,
ये विधि है बाबा ने कहा।
तो बोला ये विधि है सफलता होने की, तो बाप के प्रिय, सेवा के प्रिय, विश्व सेवा के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय जो है तो वो है एवर रेडी,
एवर रेडी।
वहाँ पे बोला था दास, दासी यहाँ अगर बनाएंगे तो वहाँ जाकर दासी बनेंगे, खुद दासी वहाँ बनेंगे। यहाँ अगर दासी बनाई, बड़ा पावरफुल वाक्य था ये, यहाँ अगर दासी बनाई तो वहाँ दासी खुद बनना पड़ेगा। बीस बरोबर, ठीक है ना, तो यहाँ दासी नहीं बनाना है किसी को, दासी बनना पड़ेगा,
वहाँ कोई देखेगा नहीं, यहाँ देख
महारानी मुर्गे चलते हैं,
महारानी। एक मुरली में पूछे था मखमल की रानी बनोगी या रेशम की रानी,
रेशम
की इसी हफ्ते में
मखमल, एक प्रश्न था मखमल होता है ना, रेशम,
रेशम
रेशम माताओं को ज्यादा मालूम है
शायद। अच्छा चलो उसको छोड़ो, अभी आ जाओ वापस, कहाँ थे, सफलता घेराव मुरली वहाँ पर खत्म हुई, नहीं महारथियों की उधर ये बताया ना, हर संकल्प महान हो, स्वतः याद, स्वास में संकल्प में याद हो, स्वतः याद करनी ना पड़े, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे साधारणता समाप्त होती जाएगी,
महानता बढ़ती जाएगी।
साधारणता एक मुरली में था, एक अव्यक्त वाणी थी बीच में, एक मुरली में तुम हो विशेष पाठधारी, चलते फिरते खाते पीते स्वयं को विशेष पाठधारी समझते हो, योग करते समय नहीं, चलते फिरते खाते पीते स्वयं को विशेष पाठधारी हीरो एक्टर समझते हो, हीरो एक्टर पर ही सारे ड्रामा का मदार है, आधार है, इसके लिए अलबेलापन उसमें ना हो, सदा अटेंशन, सदा अलर्ट, चल रहे हो किस गति से चल रहे हो, यहाँ चलना और प्लेन में चलना फर्क तो है, यहाँ चलना और प्लेन में चलना उसमें फर्क तो है, बाबा ने वहाँ पूछा था। तो फिर आलस्य नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, अलबेलापन नहीं होना चाहिए, और साधारणता नहीं होना चाहिए। विशेष एक्टर, एक्टर और साधारण एक्ट करे तो लोग क्या होंगे, हंसेंगे ना, विशेष एक्टर और साधारण एक्ट तो लोग तो हंसेंगे ना। तो बाबा ने बोला था वहाँ पर, देख रही है तुमको सारी दुनिया, पंजाब का ग्रुप था ये, गजभोर करने वाले,
मधुबन को भी विश्व स्टेज बोला है बाबा ने,
विश्व स्टेज।
एक मुरली में बोला था ये है टीवी स्टेशन, यहाँ तुम्हारे मन में जो संकल्प चल रहे हैं ना, वो सारे विश्व तुमको
नहीं पड़ता नहीं बोला।
विश्व का
हाँ
यहाँ जो सुई गिरती है
99 में बोला
यहाँ अगर मधुबन निवासियों के मन में हलचल तो सारे संसार में उधर हलचल, इधर व्यर्थ में जा रहे हैं तो सारा संसार व्यर्थ में जाएगा, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हाँ वो एक पॉइंट थी, यहाँ साकार वतन में कोई हिलता है तो उसके हिलने का अनुभव बाप को वहाँ होता है।
बाबा भी हिल जाता
है, बाबा हिलता तो नहीं, उसको अनुभव होता है।
ये अच्छा स्टडी करता
रहता है,
ज्ञान का स्टडी करना है। बाबा ने आज बोला ना रेगुलर स्टडी करना, इसमें कितना सुनना सुना समाना सम, ये बना स्वरूप बना स्टडी स्टडी है ये। स्टडी पावरफुल करनी है, स्मार्ट स्टूडेंट ना स्टडी में लगे रहते हैं, टीवी नहीं देखते, कुछ नहीं क्रिकेट नहीं देखेंगे, कुछ नहीं अपनी स्टडी करते रहते बस, और फिर आखिर में वही आगे जाते हैं। टाइम जो वेस्ट करते रहते हैं टाइम जो वेस्ट करते हैं उनको पश्चाताप करना पड़ता है। चलो वरदान आज का विघ्न विनाशक गणेश, तीनों कालों को तीनों लोकों को जानने वाले विघ्न विनाशक
बुद्धि,
किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनती। अगर हमको ऐसा लगा कि मैं किसी सेवा में विघ्न रूप बन रहा हूँ तो पीछे हट जाना चाहिए, ये एक दूसरा पॉइंट। अगर ऐसा सूक्ष्म में भी अनुभव हो गया कि इस सेवा में शायद मैं विघ्न रूप हूँ, खुद ही पीछे हट जाना चाहिए इसके पहले कि दूसरे पीछे हटा दे। अगर विघ्न पड़ता भी है तो बाबा ने कहा वो स्वयं विघ्न विनाशक विघ्नों को खत्म कर देते, वायुमंडल परिस्थिति वातावरण को बदल देते, उनका वर्णन नहीं करते, उन पर अपना प्रभाव डालते। सत्यता चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता। चलो अभी पीछे जाओ 5-10 मिनट एक हफ्ते में।
ज्ञान में मीठा
ज्ञान है मक्खन, मित्र संबंधियों की याद मैला कर देते,
किचड़ा आ जाता है,
किचड़ा तो आएगा होली में, किचड़ा गिरता है, यहाँ भी किचड़ा ऊपर से गिरेगा। पाया की चमाट, कोई लोभ से, कोई काम से, भक्ति मार्ग भक्ति संन्यास और
ज्ञान मार्ग में भी एडॉप्टेड होते
हैं।
ये दूसरा बता रहे हैं, भक्ति मार्ग में गुरु करते हैं, गुरु के
चेले,
संन्यास में फॉलोअर्स, यहाँ पर बाप और बच्चे, ये भी कल परसों थे। ऐसा वाक्य नहीं था,
जुगाड़ देगा
और फिर दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत है, गुप्त योग करो पूरा ही उड़ के क्यों दिखावा करना है? वो उसको कहा जाता है गुप्त योग कि जिसमें कोई दिखावा नहीं है, ये नहीं चाहते कि दूसरे हम देखे हम योग करें, पूरा ओढ़ लो और अंदर ही एकदम बाबा की याद में मगन। नहीं नहीं योग कर रहे इनकी क्या बात है,
इंटरेस्ट तो क्यों नहीं लाएगी।
एक मुरली में बाबा ने बोला कि तुम ईश्वरी गोद में ये बहुत भारी नशा,
बड़ा भारी नशा तुमको होना चाहिए, बाद में जाओगे देवता ही गोद में, अभी हो ईश्वरी
गोद में, ये बड़ा भारी नशा,
बड़ा भारी तुमको नशा होना चाहिए, ये तुम ईश्वरीय गोद में अभी कल पर करिए। और एक्यूरेट रूहानी हैंडलिंग, यथार्थ हैंडलिंग
श्रेष्ठ,
कौन सी है कौन सी है कौन सी है वो तो बताओ
आगे
वो तो बता दी। सहयोग देना, उसमें चार बातें थी, तीन चार बातें थी उसमें। अगर किसी को महसूसता होती है आपको किसी में कोई कमी है तो उसको सहयोग देकर वो जगह भर देनी, एक दूसरा था लास्ट था ये, दूसरा ये था कि इसने ऐसा कहा ऐसा किया, ये देखना सुनना समझ जानते हुए भी परिवर्तन अपने सहयोग के स्टॉक से परिवर्तन कर देना, ये एक उसमें पॉइंट था। और उसमें था सहयोग, हाँ जैसे बाप ने हरेक को
समझ लिया,
नहीं नहीं वैसे को किसी भी की कमजोरी नहीं देखी और ही हिम्मत दिलाते कहा तुम मेरे हो थे आगे बढ़ो, ऐसे बाप को फॉलो करो। और एक पॉइंट था उसमें नहीं, हर एक की विशेषता देखते हुए आत्मिक प्यार इमर्ज हो तो बाप का और सर्व के स्नेही बन जाएंगे। आत्मिक प्यार अर्थात रहेगा तो सहयोग सद्भावना सहयोग की भावना दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। ये है एक्यूरेट रूहानी हैंडलिंग, यथार्थ हैंडलिंग, ऐसा पॉइंट था। मतलब बाप के साथ किसी की कमी नहीं देखना, कमजोरी नहीं देखना है। और पहले आप वाला हो गया, ये एक हो गया, दूसरा
विश्व ड्रामा के
वो लिफ्ट वाला हो गया। विश्व ड्रामा सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा को साक्षी होकर वो दिव्य बुद्धि और शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा,
शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के द्वारा
दिव्य गति के पुरुष का उड़ान भरो और अपने मन की एकाग्र अपने संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती बुद्धि को एकाग्र करना ही सच्ची सेवा है। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाओ तो विघ्न विदाई देंगे। और
तीनों खजाने
के 100 मार्क्स, मनसा वाचा कर्मणा,
मनसा
वो एक उस तरह का वरदान ना था ना,
मनसा में अटेंशन की बात है,
वाचा में वाचा सेवा करते हो, मनसा में अटेंशन, कर्मणा में भी संबंध संपर्क में अटेंशन, तो हर एक तीनों सब्जेक्ट में बाबा ने कहा बाबा के पास खाता जमा होता है, हर एक खाता के 100 मार्क्स। और
पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो अगर वो पुकारते तो गंगा तो पहले से ऑलरेडी इधर है तो पुकारते क्यों।
हाँ, गंगा के बारे में एक और एक चीज थी कि गंगा अविनाशी है पर तमो प्रधान तत्व मिक्स हो गए, इसके वजह से चंचलता आ गई है, बाढ़ आती है अपना रास्ता छोड़ देती है। पर सतयुग में हर चीज नहीं, सतयुग में
कायदे में
सदा कुछ एक दूसरा ही वाक्य था बाबा का, बहुत अच्छा मुझे लगा वो। सतयुग में हर चीज रेगुलर तो नहीं था, कुछ दूसरा था,
नियम
नहीं, मर्यादा भी नहीं था। हाँ मतलब सेम है पर वो बहुत सुंदर वर्ड है। वो
क्या है, बाबा की भाषा बोलते हैं ना तो उसमें ज्यादा संतुष्टि मिलती है।
बस है,
अगर बच्चे उसकी भाषा नहीं मालूम तो क्या है,
आनंद है उसमें वहाँ वाक्य। हाँ, एक मुरली पूरी इस पे थी, एक मुरली थी वो गवर्नमेंट के बारे में, एक गवर्नमेंट होना चाहिए, सारे गवर्नमेंट इधर करना,
अधिकतर मुरली है श्री कृष्ण और शिव बाबा की।
हाँ, कोई मुरलियों में
चंद्रमा,
हाँ कोई मुरली में बाबा ने क्राइस्ट को याद किया, किसी को मोहम्मद को याद किया, किसी में बुद्ध को याद किया पार निर्वाण के लिए, फिर क्राइस्ट के लिए उसको सूली पर नहीं चढ़ाया, वो तो दूसरी सत्व प्रधान और कर्मातीत शब्द यूज किया उसके लिए। संगम युग छोड़कर कर्मातीत और भी कोई है, मतलब बाबा ने वो नई आत्मा है, कर्मातीत मैसेंजर है वो, ऐसे बोला उसके लिए। हाँ, क्राइस्ट नहीं चढ़ सकता, जीजस चढ़ा, जीजस की शरीर में क्राइस्ट की आत्मा है ना।
एक मुरली जो डायरेक्ट उसमें ज्यादातर बाबा का ही मना बैठा था, जो बाप का
कल ही था ना, कल की मुरली।
बाप का कर्तव्य क्या है, जो
स्थापना और पालना,
हाँ, बच्चों को मदद करना,
जिस कर्तव्य में बच्चों को मदद करना है, वो उस मुरली में पूरे ज्यादातर बाबा के
कभी बाबा ने वो राजेंद्र प्रसाद को याद किया, वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बोलता है अभी बीमार हूँ। कभी होम मिनिस्टर को याद किया वो बदलाव के बारे में, कभी सन्यासियों को याद किया, कभी ये मुरली में कितनी सारी चीजें देखो, कभी सतयुग के बारे में कुछ बोला, वहाँ लड़ाई नहीं होगी, रोएंगे नहीं, यहाँ तो मारा मारी है, यहाँ एक दो दुश्मन है, यहाँ क्या क्या खाते है, जानवर भी को भी मारते हैं, ये सब चीजें सारी मुरलियों में कॉन्ट्रास्ट है, जैसे सतयुग का और अभी का, कभी सतयुग के बारे में, कभी त्रेता के बारे में, कभी भक्ति के बारे में, कभी ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट, कभी कृष्ण और शिव बाबा की महिमा का कॉन्ट्रास्ट, कभी शिव बाबा की अपनी महिमा कि वो डायरेक्टर क्रिएटर प्रिंसिपल है,
मैं ही हूं, और कोई
नहीं है। जो ये जिसने इसको नहीं जाना वो बेसमझ है, जिसने इसको नहीं जाना कुछ नहीं जाना,
बाप को नहीं जाना कुछ भी नहीं जाना।
परिचय ज्ञान अर्थात बाप का परिचय, परिचय नहीं मतलब नो ज्ञान,
नहीं बोला ना इसी में बोला हाँ। बोला बैरिस्टर बनना ये तो
जैसी पढ़ाई वो है पाई पैसे की पढ़ाई नहीं।
और बोला कि यहाँ क्या है बाबर भर से चक्र को याद करना और राजा बन जाओगे।
बाप तुमको हर बात सहज करके समझाते हैं
हजार बार पूछ लो
उसमें कितने मेहनत लगती है बैरिस्टर की पढ़ाई में और ये
सहज है तो सारी जो मूल्य है उसपे बाबा ने बोला ना उसकी गहराई में जाके उसपे मनन करो कि ये मूल्य में आखिर क्या है आज नया क्या है वो ढूंढना है उसमें। नहीं तो उसका चिंतन नहीं करते ना ऐसा लगता कल की आज की परसों सब सेम ही तो है ऐसा। अगर चिंतन नहीं किया तो चिंतन किया तो एक एक पॉइंट में फर्क है हर एक बात में डिफरेंट है।
और एक पॉइंट और एक और है मीठा बनने की विधि बाबा ने बताई
ज्ञान अति मीठा है
नहीं और ज्ञान मार्ग में तुम्हें बहुत मीठा होना चाहिए और उसकी विधि बाबा ने कहा
वही बताया
पूरा बाप से अगर योग है
संपूर्ण बाप से अगर योग है तो मीठा संपूर्ण बाप से अगर तो गृहस्थी भी यहाँ रहने वालों से भी आगे जा सकते हैं गृहस्थी भी यहाँ रहने वालों से आगे जा सकते हैं
इसी में बोला था नहीं पूरा योग ये बोला बाप से तब मीठा बन।
और राजेश भाई आपने एक भी पॉइंट नहीं बताई बता दो
हाँ हम भी बोलने वाले थे वाह क्या पॉइंट नहीं सुनी
एक ही मारा लेकिन अच्छी तरह मार दिया थोड़ा।
कोई कोई है जो फेरी लगाते हैं वो नंबरवार पुरुषार्थानुसार प्रजा बनते हैं। एक है जो फिदा होते हैं वो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार पद पाते उच्च पद पाते
में
दोनों भी चीजें उसमें वो बड़ा पावरफुल पॉइंट। मैं नहीं बनता हूँ हाँ ये बहुत राज वाली बात बता दी इन्होंने
ये तो हमें किसी को भी याद नहीं आई।
ये देखो मैं अगर राजा बनूंगा तो मुझे भी माया से हाथ करना इसके लिए मैं नहीं बनता। और बोलो
मिठाई लाल तो
मिठाई
लाल कुछ
मैं इसको महाराजा बनाता हूँ मैं नहीं बनता ऐसे था उसमें। और चार हूँ आत्मा भी चार है आत्मा में परमात्मा दोनों में पार्ट कितना बड़ा पार्ट
कल बोला ना
हाँ
निराकार बाप के बच्चे तुम
आत्मा का बाप आत्मा भी सूक्ष्म आत्मा का बाप भी सूक्ष्म। और
पावन बनने की
दुख करता सुख करता मैं हूँ डायरेक्टर क्रिएटर एक्टर पी वो सब मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता। और
संस्कार मिटाने मिलाने वाला क्यों
हाँ ये एक पावरफुल वर्धन उसमें दो भाग थे जैसे मनसा स्थूल सेवा के लिए भाग के आते वैसे मनसा में भी जो संकल्प होता है उसमें एवर रेडी फिर उसमें बोला था कि जो सोचे वो तुरंत करो फिर उसमें था रूहानी सेवाधारी अर्थात रूहानी संबंध संपर्क निभाने में एवर रेडी और संस्कार मिलाने मिटाने में भी कोई समय नहीं लगता। और लास्ट में बोला था बड़ा रास है संस्कार मिलाने। हाँ ये लास्ट जन्म लेना नहीं है और जन्म
देना नहीं है
बड़ी पावरफुल बहुत बात बोलती है इसमें एक ही वाक्य में ऐसा बोलती है कि बस इसमें गहराई है उसमें
जन्म देना ही नहीं है
जरूरत नहीं है इसको वृद्धि देने की। वृद्धि कैसे होगी पूछा तो बोला ये भ्रष्टाचार की वृद्धि है बाबा ने आगे बोला
भ्रष्टाचार की वृद्धि काफी इस मामले में बोला तुम लोगों को जो पढ़ा दिया वही बोलते रहते। मैंने कहा ठीक है
और एक या दो पॉइंट फिर खत्म करते दो पॉइंट चिमन भाई राजीव भाई बताओ
ये में बोला जो निश्चय की फर्क क्या है
पूरा बताओ आधा नहीं बताओ
वो
तो राजी हो गया वो हो गया
परमात्मा पर फिदा हो
गया वो हो गया
वो हो गया
दूसरा
एक श्लोक है यार कोई पावरफुल
वो उसी ऑब्जेक्ट मानी थी छोटी सी
वाला हो गया साक्षी दृष्टा हो गया
श्रेष्ठ सच्ची सेवा हो गई
अंतर का भी हो गया
सत्यता
सत्यता
हो गई
रॉयल आत्मा
ये आज वाला
यूनिटी की रॉयल्टी अनुभव करना कराना रॉयल आत्मा की मिशन
रॉयल्टी का मतलब
यूनिटी का मैं भी इसका बड़ा सोचा पर कुछ ज्यादा उसमें सारा ही प्योरिटी के बारे में डाल दो।
प्योरिटी में रॉयल्टी चाहिए,
प्योरिटी में रॉयल्टी,
प्योरिटी में और भी कुछ है,
प्यूरिटी ही रॉयल्टी भी है,
प्यूरिटी की रॉयल्टी।
हाँ वो तो बोला, पर प्यूरिटी भी रॉयल्टी है,
और प्यूरिटी नॉर्मल भी है, रॉयल्टी भी है,
रॉयल्टी वाली प्यूरिटी
और नॉर्मल प्यूरिटी।
अगले बार डिफाइन
वाला और देसी की
फर्क
है, ये प्यूरिटी में देसी।
एक्चुअली इसमें ये अंतर हो सकता है,
हमारी धारणा खत्म हो
जाए। आपको बताऊँ, जैसे घी होता है ना, उसका कोई टेस्ट नहीं होता अपने आप में, जब किसी चीज में मिला के खाते हैं ना तो वो टेस्ट देती है, तो ऐसे ही वो रॉयल्टी है। मतलब जब प्योरिटी
है, इसके बारे में थोड़ा और सोचना,
थोड़ा डीप जाइए।
और
एक बहुत है,
कौन सा
बाबा को बात कैसे
देनी है।
हाँ ये तो फिक्स रहेगी,
वो रहेगी हमारा। हमारा टाइम आज थोड़ा लेट चालू हुआ,
पहले तो ये है की बात को पहले हम सुने, पहले बाबा की बात को हम सुने, बाबा की बात को माने तो हमारी बात लेगा।
ये कुछ बता रहे क्या,
एक पॉइंट में था ना हेडलाइन में, तुम्हारा बात का असर तब आएगी,
वो तो हड्डी हड्डी धारणा की बात थी ना आपने बोला,
हड्डी धारणा आपको ये पॉइंट हड्डी एकदम फिट हो गया अंदर,
कोई बात नहीं है। हड्डी बड़ी
बाप को कैसे देंगे, सच्चाई सफाई होगी
वो दूसरी,
किसी को अगर कहें काम महा शत्रु है तो किसी को बोल नहीं सकेंगे, वो वाला पॉइंट
अलग है।
इसको और नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे, 10-10 हो गया है ना। ओम शांति।
मैं आते समय एक भाई ने पूछा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मुझे आना है।